ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान केवल अनुच्छेदों का संकलन नहीं है, बल्कि इसकी भावना और शब्द सरकार के लिए मूल्यवान है। श्री मोदी ने कहा कि संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संविधान 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने संविधान दिवस मनाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोगों का त्योहार बन गया है। उन्होंने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध करने की है। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार के दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि देश गरीबी के खिलाफ विजयी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 6 दशक बाद ऐसा हुआ है कि लोगों ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार चुना है। प्रधानमंत्री जब बयान दे रहे थे तो कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य हंगामा करके सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे सीटों पर वापस जाने को कहा। बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के वॉकआउट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में अपने ही सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी घोषणा की। इससे पहले कल लोकसभा की कार्यवाही भी श्री मोदी के संबोधन के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा के 264वें सत्र के समापन के बाद संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य भी उपस्थित थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। हेमंत सोरेन को नए मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में लिया गया। ये बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के रांची स्थित सरकारी आवास पर हुई। इस साल 31 जनवरी को धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। गंभीर रूप से घायल 31 लोगों का अलीगढ़, आगरा, एटा और हाथरस के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 72 शवों की पहचान की जा चुकी है। मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उपयोग करने के भारत के दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण करना है। नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया। यूरोकप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल की टीमें तय हो गई हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अंतिम 8 में जगह बनाई है। उधर विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के पहले दौर में आज कई भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। रोहन बोपन्ना, एन श्रीराम बालाजी और सुमित नागल अपने अपने जोड़ीदारों के साथ मैच खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।